राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 21 अगस्त 1992 को प्रातः लगभग 8:30 बजे श्री राम द्वार मथानिया में हुआ। राम
पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण।
मनुष्य में एक करने की शक्ति है और करने का अधिकार भी है। अशुभ काम न करना और शुभ काम करना ये इसका अधिकार है, ये कर सकता है, इसमें इसकी स्वतंत्रता है। एक इसमें मानने की भी योग्यता है, जैसे करने की योग्यता है ऐसे मानना स्वीकार करना इसकी भी योग्यता है। तीसरी इसमें जानने की भी योग्यता है, ये जानता भी है सामने वाला। ये तीन योग्यता है इसमें, करने की, मानने की और जानने की। करने की और जानने की योग्यता है ये तो इसके सामने बात है, मानने की बात वह होती है जो जानने में और करने में नहीं आती, ऐसी बात जानने की होती है। तीन भाग है। जैसे करने का क्षेत्र तो सामने है ही, संसार ये सामने ये करने का क्षेत्र है और जानने का है स्वरूप, अपने स्वरूप ये जानने का है और मानने का है परमात्मा। यद्यपि कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि जानने के विषय तीन है, जगत जीव परात्मना, जगत जीव और परमात्मा, परंतु परमात्मा जानने का विषय नहीं है, उसमें मानने का विषय विशेष आता है। शास्त्रों से मानते हैं अथवा संत महात्माओं से मानते हैं, जानने का विषय वहां होता है जिस विषय में कुछ जानते हैं और पूरा ठीक नहीं जानते, वहां जिज्ञासा पैदा होती है। जिसको हम जानते नहीं वहां जिज्ञासा नहीं होती है, वहां तो मान्यता ही होती है, मान सकते हैं नहीं मान सकते हैं। इस वास्ते ईश्वर के विषय में दर्शनों में मतभेद आता है, कई दर्शनकार ईश्वर को नहीं मानते हैं, कई दर्शनकार ईश्वर को मानते हैं, पर जानने में और करने में प्राय दार्शनिक एक रूप होते हैं। परमात्मा है उसका पता नहीं, शास्त्रों से संतों से हम सुनते हैं, सुनकर के हम मानते हैं, तो सुन करके और मान संकोच में संत महात्माओं से शास्त्रों से सुनकर जो मानते हैं उसको प्राप्त करना पड़ता है, और करना और जानना है उसको प्राप्त करना नहीं है, उसको तो जानते करते हैं तो संसार में काम करते ही हैं हम, और अपने आप को जानते मैं हूँ। अब जानने में करने में दो बात की जिम्मेवारी होने से क्या हुआ, करने में सेवा करना है, दूसरों को सुख पहुंचाना है, ये करने का क्षेत्र है, और मानने का जानने का क्षेत्र स्वयं है। क्यों संसार को जानते अपने को ही स्वीकार करते हैं, मनुष्य सामने दो बातें हैं, एक बात तो सामने ये दिखता है संसार ये है, एक मैं हूँ ये बात इनके सामने है। ईश्वर के पीछे में ऐसा नहीं है, जिज्ञासा होती है, कुछ जानते हैं कुछ पूरा ठीक नहीं जानते, वहाँ जिज्ञासा होती है, जहाँ कुछ नहीं जानते वहाँ मानने की बात होती है, वहाँ जिज्ञासा नहीं होती है। हाँ, शास्त्रों का आदर करो, महात्माओं का आदर करो, उन बातों को अगर हम स्वीकार करें तो वो भी एक जानने का विषय हो जाता है, परंतु स्वतः संसार का संसार की तो प्रसिद्धि है और अपना एक भान है, ये दो चीज तो हरेक को है, कोई शास्त्र सुने न सुने, कोई पढ़े न पढ़े, किसी को महात्मा माने न माने, उसका कहना स्वीकार करे न करे, तो भी ये दो चीज तो बड़ी भारी प्रसिद्ध है, सामने करने का क्षेत्र और अपने मानने की बात। तो जो प्रसिद्धि होती है उस प्रसिद्धि क्षेत्र में करने की बात होती है, और जो एक भान होता है, आभास होता है, अपनी एक सत्ता दिखती है, इस विषय में जानने की बात होती है, इसमें करने की नहीं होती है। करने से भी इसे मदद मिलती है, पर खास करने की नहीं होती है, वो जानने का विषय होता है। तो जानने का विषय है तो जानना चाहिए स्वयं को कि मैं स्वयं क्या हूँ, और करना चाहिए संसार को कि जो संसार की सेवा, तो करने की सेवा की ही बात है। कारण क्या है कि करने की सामग्री जो हमारे पास है वो सामग्री संसार से अभिन्न है। जैसे हमारा स्थूल शरीर है तो स्थूल सृष्टि से अभिन्न है, अलग हम मानते हैं, अलग है नहीं। एक बहुत बात याद आ गई, एक वाच्यार्थ और एक लक्ष्यार्थ कहते हैं, वाच्यार्थ जो सामने दिखता है, लक्ष्यार्थ जो लक्षण से जिसको जानते हैं, सामने ऐसा दिखता नहीं उसको लक्ष्यार्थ कहते हैं। ऐसे लक्ष्यार्थ होता है, व्यंग्यार्थ होता है और शब्दार्थ होता है, अभिधा शक्ति है, व्यंजना है, लक्षणा है, इनसे जानते हैं, वो एक विषय अलग है। तो जानते सीधा साधा उसमें लक्षणा व्यंजना आदि किसी की जरूरत नहीं, ऐसा हम जानते हैं वो, और लक्षणा और व्यंजना से जानते हैं वो थोड़ा दार्शनिक विषय लेकर हम जानते हैं, पढ़ाते हैं, विचार विचार करते हैं, तब आता है। तो संसार के साथ में अभिन्नता है शरीर की, तो शरीर की अभिन्नता है, ये वाच्यार्थ है जी, वाच्यार्थ ही है। तो वाच्यार्थ ही एकता से भी परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है, लक्ष्यार्थ से भी, जिसमें लक्ष्यार्थ में केवल शब्दों के द्वारा हम समझते हैं, सामने देखने में नहीं आता। लक्षणा होती है वो जहत लक्षणा है, अजहत लक्षणा है, और जहत अजहत लक्षणा है जिसको भागत्याग लक्षणा कहते हैं, तो वो हम अटकल ही लगाते हैं, उसमें सामने दिखता नहीं है। इसके उदाहरण दीखते हैं, उदाहरण मिलते हैं, परंतु इतना तीक्ष्ण नहीं है लक्षणार्थ में। ये एक काव्य का साहित्य का विषय है, पढ़ाई करने से इसका मालूम होता है। और ये जीता है संसार, तो संसार की परिस्थिति और अपना भान, ये कोई कुछ पढ़ाई मत करो, स्वतः सामने आता है। ये कुछ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, स्वतः सिद्ध है। जैसे मूर्ख से मूर्ख को भी एक परिस्थिति होती है और अपना भान होता है, ये सब के अनुभव की बात है। कोई हिंदू मुसलमान ईसाई, कोई ज्ञान हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई ज्ञान हो, सबके सामने सीधी साधी बात है। मानने की बात होगी तो शास्त्रों के माने में मानेंगे, मानेगा तो मानने में कोई साकार मानते हैं ईश्वर को, कोई निराकार मानते हैं, कोई सगुण मानते हैं, कोई निर्गुण मानते हैं, कोई द्विभुज मानते हैं, कोई चतुर्भुज मानते हैं, कोई सहस्रभुज मानते हैं, कोई विराट रूप से मानते हैं। मान्यता होती है, उसमें एकता नहीं होती। प्रतीति में एकता ही होती है, दिखने में भी एक दिख रहा है, प्रतीत रहा है। प्रतीति में ज्ञानेन्द्रियां काम करती है, कर्मेन्द्रियां भी काम करती है, उसके अनुसार क्रिया करने में। तो प्रतीति में जो हो रहा है उसमें सेवा कर रहा है, केवल सेवा, अपने स्वार्थ का त्याग कर, अभिमान का त्याग कर, मान बढ़ाई का त्याग कर, केवल सेवा करना है। क्यों करना है सेवा? कि संसार से ये शरीर अभिन्न है, तो अभिन्न सेवा करना है। और सेवा करने वाले प्रयत्न को अगर जानना चाहे तो वाच्यार्थ की एक साथ से जानते हैं, और वाच्यार्थ की एक साथ से भी बोध हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, जीवन मुक्ति हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, पुरुष मुक्ति हो जाती है। जैसे बाली मर गया तो तारा बहुत विलाप करने लगी, तो भगवान ने क्या कहा, कृष्ण जगत पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर, सो तन तर यह आगे सोवा, जीव नित्य तुम कहीं लगी रोवा। ये वाच्यार्थ ये था कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, ये वाच्यार्थ की एकता है जो प्रत्यक्ष दिखती है। वो वाच्यार्थ जो शरीर है वो तेरे सामने पड़ा हुआ है, उसके लिए क्या रोना है, ये तो वाच्यार्थ है ही। अब ये क्रिया करे न करे, पर क्रिया में भी करने में वायु है, उन वायुओं में भी 10 वायु है, उसमें एक वायु मरने के बाद भी काम करती है, धनंजय वायु, प्राण अपान उदान समान ज्ञान और नाग कूर्म कृकट देवदत्त धनंजय, ऐसे 10 वायु है, उनमें एक वायु मरने के बाद भी काम करती है। तो ये क्रिया आदि होती है वायु से होती है, इसमें वायु की प्रधानता है, क्रिया जितनी होती है और बल होता है जो वायु में होता है। तो वायु पुत्र हनुमान जी महाराज अतुलित बल धामम है, और भीमसेन में ही थी तो बहुत बड़ा भारी बल था, तो ये वायु पुत्र थे। तो वायु का वह श्वास आदि की चलना करना, इसमें वायु की प्रधानता है। तो ये तो सबका समान ही है, और जिस जीव नित्य है उसको देखा नहीं, वो नित्य है, उसे नाश होता नहीं, तो ना ये सही तो नाशवान है, वो नाश पड़ा ही है सामने। और जीव नित्य है उसके लिए रोने की बात नहीं, उसका विनाश होता नहीं कभी, नित्य सर्वगत सानु रसरो सनातन। तो उपजा ज्ञान चरण सबल रहेगी, उसमें उपजा ज्ञान लिखा है, इस वाच्यार्थ एकता से भी तत्व ज्ञान होता है, तब कहते तो उपजा ज्ञान चरण समझ लागी। लीन ने भक्ति वर मांगे, उसने भक्ति का वरदान मांगा। तो वाच्यार्थ है वो अनुभव में आता है, लक्ष्यार्थ तो केवल विचार करके, विचार के द्वारा हम जानते हैं, वो अनुभव ऐसा नहीं आता जैसे वाच्यार्थ आता है। ऐसे दोनों का नतीजा एक होता है। अब ये विचार है कि तीन शक्तियां हैं तो परमात्मा है वो मानने के हैं, तो मानने में आप मान नहीं सकते, नहीं भी मान सकते, स्वतंत्र है। शास्त्र को माने, संत महात्माओं को माने, तो ईश्वर को मानना होता है। और वो भी प्रमाण मामूली नहीं है, शास्त्र भी प्रमाण है, कर्तव्य कर्तव्य में प्रमाण बताया। तस्मात शास्त्र प्रमाणों से कार्य कार्य विदर्शित हो, कार्य से अकार्य में सोलहवें अध्याय में, क्यों सोलहवें अध्याय में आसुरी संपत्ति जब चली है तो दैव विसर्षा प्रोक्त आश्रम पास मेरे सुनो, देव तो कह दिया आश्रम मेरे ने सुनो, तो आसुरी संपत्ति और कौन हो गए के प्रवृत्ति से निवृत्ति से बिंदु आसुरा जाना न बिंदु आसुरी प्रकृति वाले करना क्या चाहिए क्या नहीं करना नहीं जानते, क्यों आसुर असुर कौन है, असुर ना प्राण और प्राण पोषण परायण है, उनमें रमण करते हैं भी असुर होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ज्ञान है ही नहीं, प्राण सब पशु पक्षियों में जीव मनुष्य में भी है, तो ये प्राण असुर पुरुष होते भी जानते नहीं, इस वास्ते अंत में बताया कि नहीं जान सो क्या करे भाई, कि तस्मा शास्त्र प्रमाण से कार्य कार्य व्यवस्था तो कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रधा प्रमाण है, ज्ञातवा शास्त्र विधान कर्म करते हुए हर रसी शास्त्र विधान को जान करके कर्म करता तुम्हें योग्य करना चाहिए, तो करना चाहिए उसमें शास्त्र की विधि ज्ञान करके करने से कर्म होता है और मनुष्य कर्म संगी है, रज से प्रयंगत्वा कर्म संगी सुझाए थे, रजोगुण के पड़ने पर मरता है वो कर्म संगियों में पैदा होता है, यथा सत्व प्रवृत्ति तू प्रलिंग सत्व के प्रधान में तो ऊर्जंगत सत्व था उत्तमान लोकान अपने प्रतिपद्य से कहा जाता है, और मध्य संति राजसा और अधोगत संति तामसा तामसी वृत्ति में मरने वाले अधोगत हो जावे हैं, तात्काल भी ये गति होती है और स्थिति होने वालों की ये गति होती है, ऐसी तीन गति चौदह अध्याय बताया, तो जानने मानने करने की तीन शक्तियां है, तो तीनों शक्ति पूर्णता से काम आ जाए तब मनुष्य जन्म सफल हो जाता है, करने में तो सेवा करना, जानने में स्वरूप को जानना, मानने में ईश्वर को मानना, तो क्या हो जाएगा, करने से सेवा करे अपने लिए स्वार्थ के लिए काम न करे तो वो कृतकृत्य हो जाता है, और अपने लिए काम करता है तो कृतकृत्य नहीं होता, वो फिर व्यापार चलता ही रहता, आदान प्रदान करना उनके लिए, वो हमारे लिए हम अपने लिए स्वार्थ का प्रचार करे, तो ये जन्म मरण के बंधन में जाने वाला होता, कर्म संगी मनुष्य जन्म है, यही संसार का आरंभ है, यद्यपि शास्त्रों में अनादि लिखा है परंतु विचार करके देखें तो कहाँ से आरंभ हुआ इसका पता कैसे लगता है, कि जहाँ समाप्त होता है वहाँ से पता लगता है, तो मनुष्य जन्म 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 मरण समाप्त कहाँ होता है, मनुष्य योनि में, तो मनुष्य योनि से ये आरंभ हुआ है, आरंभ में क्या है कि जो अनधिकार चेष्टा की है उससे बंधन हुआ है, तो अपने प्राप्त हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से जन्म मरण होता है और उसका सदुपयोग करने से उद्धार होता है, ये खास बात है, तो दुरुपयोग न करे सदुपयोग करे, जिसको जितना जो कुछ मिला है उसी से उसकी मुक्ति हो जाएगी, उसको ज्यादा धन की ज्यादा जानने की ज्यादा ज्ञान की ज्यादा बल की ज्यादा योग्यता की आवश्यकता नहीं है, और उनको बढ़ावे तो अच्छी बात है, काम ही आवेगी, ये बढ़ाई हुई योग्यता भी काम आवेगी, धन भी काम आवेगा, योग्यता भी बल भी काम आवेगा, परंतु मुक्ति के लिए कल्याण के लिए जितना जिसको प्राप्त है धन है बल है विद्या है योग्यता है जितनी प्राप्ति है इतने से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें अधिकता की आवश्यकता नहीं है, और बढ़ावत अच्छी बात है, संसार में तो ये बड़ी हुई चीजें काम देगी, बल भी ज्यादा हो तो ज्यादा काम देगा, धन अधिक हो तो अधिक काम देगा, योग्यता अधिक होगी तो पद अधिक मिलेगा, ये संसार में तो इनके अनुसार इसका मूल्य है, परंतु वो शायद संसार में ही जन्म मरण में ही है काम, जन्म मरण से अतीत होने के लिए नहीं, वही करना योग्यता अधिक निष्काम भाव हो जाए, कामना न रखी जाए, क्योंकि कारण गुण संगो से जन्म सु योनियों में जन्म है, उसके कारण गुणों का संग है। तो गुणों का संग है ये बंधन का कारण है, और इसमें असंगता है वो मुक्ति का कारण है। तो संग करने से जन्म मरण होता है, और पदार्थों कर्ण कर्म करते तीसरी विधा कर्म संग्रह, उन कर्मों का संग्रह होता है उसे भोगा जाता है। कर्मों के वो क्रियमाण है, फिर संचित है, फिर प्रारब्ध है, प्रारब्ध से फिर शरीर है, शरीरों में मनुष्य शरीर है, वो कर्तव्य के लिए है। ये एक कर्मों का विषय अलग है। तो ये तीन बात है, तीन बातों में जो अपने स्वरूप को जान लेता है वो स्वरूप के ज्ञान से वो ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। मानो जानने लायक वस्तु को जान लिया, ये बात खास। और करने की बात है, वो केवल सेवा करता है, अपने लिए कुछ भी नहीं करता। यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयं कर्म बंधना, यज्ञार्थ से अन्यत्र कर्म है, यज्ञ परमात्मा है, यज्ञ कर्तव्य कर्मों का नाम है। जितने कर्म स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्मों से पूजन किया जाए, यजदेव पूजा संगति करणेषु, तो जितना काम किया जाए वो यज्ञ है। केवल यज्ञार्थ कर्म किए जाए तो वो बांधता नहीं। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयं कर्म बंधन, और यज्ञाय आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। यज्ञार्थ केवल कर्म करे तो सब कर्म लीन हो जाते हैं, न संचित रहते हैं, न प्रारब्ध रहते हैं, न क्रियमान, संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं, समग्रम प्रविलीयते, सब लीन हो जाते हैं। इसमें बारीक विषय में फिर माना है कि भाई ज्ञान उदय जब होते हैं, संचित कर्म बिना क्रियमान उपजे नहीं, प्रारब्ध रह जाए तो प्रारब्ध रह जाए कि प्रारब्ध एक वेग है, वो वेग शांत हो जाता है। जैसे कुम्हार चक्का चलाता है तो उसे उछलता है, जब तक वेग चलेगा वो चाक वेग शांत हो जाएगा। तो वो कर्म वेग है, वो प्रारब्ध का वेग है, वो आप से आप शांत हो जाएगा। उनके कर्मों का जो बंध है, बंधन है, संबंध है, वो टूट जाता है। ऐसे भी चाहे संचित हो, क्रियमान हो, प्रारब्ध हो, उसके साथ संबंध नहीं रहता। तो वो कृतकृत्य हो जाता है जब अपने लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि संसार की सामग्री स्थूल शरीर की स्थूल सृष्टि के साथ बिल्कुल अभिन्नता है, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म सृष्टि के साथ अभिन्नता है, कारण शरीर की कारण सृष्टि के साथ अभिन्नता है। तो इनको इनके साथ अभिन्नता इनको दे दिया जाए सर्वथा, तो निष्काम भाव से भी दिया जाता है और विवेक से भी दिया जाता है। निष्भाव काम दिया जाता है वो कर्मयोग कहलाता है, और जो विवेक पूर्वक सबको दिया जाता है वो ज्ञान योग कहलाता है। क्यों? विवेक एक ज्ञान है, केवल विवेक विचार है, उसके द्वारा अपना संबंध तोड़ देना है, जल पदार्थ उत्पत्ति विनाशशील से संबंध जोड़ देना है, वो एक ज्ञान योग है। और का ज्ञान योग इतना प्रबल नहीं हो तो कर्म योग है, करके सबका सब प्रवाह संसार की तरफ ही। तो स्थूल शरीर से क्रिया, स्थूल पदार्थों से क्रिया की जाए केवल लोगों के हित के लिए, लोक संग्रह में वह संप्रसन्न कर तुम्हारे सब हित के लिए क्रिया की जाए, तो क्रिया का प्रवाह उधर होने से अहंकार तक सबका सब छूट जाता है। जो अपरा प्रकृति है वो करने में सेवा में लग जाती है, तो उसके साथ संबंध छूट जाता है। सूक्ष्म शरीर का काम चिंतन है, मनन है, ये सूक्ष्म शरीर का काम है, तो ये चिंतन किया जाए तो सबके हित का चिंतन किया जाए, अपने स्वरूप पर चिंतन किया जाए। पर चिंतन केवल से स्वरूप के चिंतन से है, और भगवान के चिंतन से परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। इसमें कई विभाग है, पर विभाग होते हुए ये सूक्ष्म शरीर का काम है। तो ये भी संसार के लिए ही किया जाए, केवल हित का ही सोचे, पर हित वश जिन के मन माही तिनका जग दुर्लभ कसु नाही। पर इस धर्म नहीं भाई, इसको धर्म कहते हैं, कर्म योग का नाम ही धर्म है। धर्म असली वही है जो दूसरों के लिए किया जाए, अपने लिए स्वार्थ किया जाए, वो धर्म पुण्य पुण्य पवित्र सर्वथा वो पुण्य कर्म नहीं है। जहाँ तक स्वार्थ बना हुआ है, स्वार्थ रहित होता है तभी वो पुण्य कर्म होता है। तो ऐसे दुनिया के हित के लिए किया जाए। तो कर्मों की करते करते जब अपने कोई संबंध नहीं रहता तब वो कृत कृत्य हो जाता है और स्वरूप का बोध होने से ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है और ईश्वर को मान लेकर चलते हैं, ईश्वर के दर्शन हो जाए, साक्षात्कार हो जाए उनके साथ, तो फिर वो प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। तो प्राप्त करना है वो मान करके करना है और जानना है वो ज्ञात स्वरूप को जानना है और करने की सेवा है, अपने अंदर कुछ नहीं तो कृत कृत्य हो जाता है। 15वां अध्याय में भक्ति का विशेष वर्णन है, उसमें अंत में कहा कि बुद्धिमान स्यात् और कृत कृत्यस्त, कृत कृत्य भी हो जाता है और ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है। और तस्य कार्यं न विद्यते, इसमें अपने गीता दर्पण में ये विषय कुछ अधिक खुला है ठीक तरह से, कर्तव्य क्या है और प्राप्तव्य क्या है और ज्ञातव्य क्या है, इसका विवेचन हुआ है। तो साधक संजीवनी में भी इसका विवेचन हुआ है। तो बात मूल में मैं कह रहा था कि मनुष्य में करने की शक्ति भी है, जानने की शक्ति भी है और मानने की शक्ति भी है। मानने की शक्ति संसार में हमने लगा रखी है, ये माता है, ये पिता है, ये भाई है, ये भौजाई है, ये भतीजा है, ये स्त्री है, ये पुत्र है, श्रीमान जी ये पति है, पुत्र है आदि, ये मान्यता की बात है, ये मान्यता में चलती है। वो मान्यता संसार में चलती है, संसार की मान्यता बंधन करने वाली होती है। मान्यता में मानना चाहिए परमात्मा को, संसार की तो सेवा करने के लिए मानना है, वो मान्यता में जितने नजदीक होते हैं उतने वो सेवा के लायक होते हैं, पर तो असंगता उनके बीच में होगी तो वो कल्याण करेगा, नहीं तो कल्याण नहीं करेगा। तो कृतकृत्य हो जाता है, कृतकृत्य करने से जो दूसरों के लिए सेवा करता है और अपने स्वरूप को जानने से वो ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है और परमात्मा के दर्शन करने अथवा परमात्मा में प्रेम हो जाए और कहीं भी आकर्षण न रहे तो वो फिर प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। प्राप्त भी कुछ बाकी नहीं रहता उसके लिए, नान वास समाप्त भी भगवान के लिए भी कहा है और जीव के लिए भी, जीवन मुक्त के लिए भी फिर करना बाकी नहीं रहता। तो ये तीन शक्तियां परमात्मा ने दी है, कृपा करके इन शक्तियों से उस परमात्मा की प्राप्ति करें। अब भगवान ने करने की शक्ति दी है, जानने की शक्ति दी है, मानने की शक्ति दी है, तो मानने की शक्ति में विवेक की प्रधानता है, करने की शक्ति में विवेक की प्रधानता, विवेक प्रधान सब में रहेगा। विवेक तो स्वर्ग की प्राप्ति करने वालों के लिए भी विवेक उचित है, क्यों शरीर से अलग है तभी स्वर्ग जाएगा, नहीं तो मरने पर स्वर्ग जाएगा कैसे पहले माने जाए। तो सत असत शरीर शरीर ऐसा भाव तो उनकी स्वर्ग आदि कामनाओं करके लेकर है, उनके लिए भी विवेक तो आवश्यक है, परंतु परमात्म तत्व को जानने के लिए अथवा आत्म तत्व को जानने के लिए विवेक की विशेष प्रधानता है। जिसमें भी विवेक की ज्ञान के लिए विशेष है और उनमें मानने की विशेषता है, श्रद्धा विश्वास की विशेषता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि स्वर्ग के जानने में श्रद्धा विश्वास की जरूरत नहीं है, और श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तो जानने की प्रवृत्ति भी कैसे होगी, तो श्रद्धा भी होगा विश्वास भी होगा, परंतु प्रधानता उसमें मानने की और श्रद्धा की है। और जानने के विषय में तत्व को जानने के विषय में विवेक की प्रधान है, सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य आदि की ये विवेक की प्रधानता है। तो विवेक प्रधान होने से ही मनुष्य द्वेष विरसन आता है। एक बात और ध्यान देकर सुने आप लोग, पशु पक्षी वृक्ष आदि स्थावर जंगम जितनी जोनी है उनसे मनुष्य में विशेषता है वो क्या है, इसमें विवेक के कारण से इसमें विशेषता है। विवेक ही न हो जाए तो पशु पक्षी समान ही है। पशुओं में विवेक कितना है, खाने पीने का है, सर्दी गर्मी का है, अपने शरीर के निर्वाह का विवेक तो पशुओं में भी है। जैसे ऊंट कितना ही भूखा हो आंख नहीं खाएगा, बकरी कितनी भूखी हो ढाक नहीं खाएगी, ये खाने का भी से खाने का ये खाद्य अखाद्य है ये ज्ञान हुआ उनको भी है। छाया घाम का भी ज्ञान होता है, शीत का गर्मी का ज्ञान होता है, ठंडी का ज्ञान होता है, बरसाती ज्ञान होता है, तो पांच ज्ञान का ये ज्ञान होता है तो वहाँ विवेक होता है। परंतु मेरा उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, ये ज्ञान हुआ नहीं है। ये विवेक मनुष्यों में है, मनुष्यों के सिवाय मेरी क्या गति होगी, वर्ष का भविष्य का ये सोच नहीं सकते। भविष्य के सोचने की बात मनुष्यों में है, और मनुष्यों में भी जो समझदार है विशेष, उनमें विशेषता से विवेक प्रकट होता है। विवेक एक शक्ति है, उस विवेक की शक्ति को भगवान देते हैं तो विवेक आता है। बिन सत्संग विवेकन हो ये कहा है, अस विवेक जब दे विधाता परमात्मा विवेक देते हैं, सत्संग से विवेक प्राप्त होता है। परंतु विवेक वास्तव में इसको जन्मजात है, प्रभु का दिया हुआ है। अपनी विवेकवती बुद्धि होती है, उससे ये सत्य नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य त्याज्य आदि बातों को जानता है। ऐसी विवेक शक्ति भगवान की दी हुई है, वो प्रगट मनुष्य में होता है। क्यों? विवेक प्रगट होने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, बुद्धि का विशेष विकास मनुष्य में होता है। बुद्धि का क्षेत्र जो माथा है ये बड़ा होता है, दूसरे पशु पक्षी छोटा होता है, गाय भैंस का ऐसे चिपका हुआ होता है, उसमें ज्ञान तंतु काम नहीं करते, इस वास्ते विवेक विकसित नहीं होता। विवेक शक्ति भगवान की दी हुई है, पर उनके निर्वाह मात्र की है, और मनुष्य में बहुत विलक्षण शक्ति है। इस शक्ति का सदुपयोग करने से कल्याण कर दे, और दुरुपयोग करने से लाखों करोड़ों आदमियों का नाश कर दे, ऐसा बम बना दे, परमाणु बम जो दुनिया का नाश हो जाए, ये विवेक का महान दुरुपयोग है। मिली हुई शक्ति का सदुपयोग करे तो कल्याण, दुरुपयोग करे तो महान पतन होता है। और सदुपयोग दुरुपयोग करने की सामर्थ्य मनुष्य मात्र को भगवान ने दी है, ये स्वतंत्रता दी है कि तुम सदुपयोग भी कर सकते हो, दुरुपयोग भी कर सकते हो, पर दुरुपयोग का नतीजा खराब होगा, सदुपयोग का नतीजा अच्छा होगा, ये ज्ञान भी साथ में विवेक में दिया हुआ है। तो कृत कृत्य होना, ज्ञात ज्ञातव्य होना, और प्राप्त प्राप्त भी होने, ये तीन हो जाए फिर उसके लिए कोई कर नहीं। मनुष्य सर्वथा सफल होता है, एक से भी होता है, कृत कृत्य होने से भी हो जाता है, ज्ञात ज्ञात भी होने से भी जाता है, प्राप्त प्राप्त भी होने से भी हो जाता है, पर पूर्ण मनुष्यता की प्राप्ति तीनों से होती है। स्वरूप का तो बोध हो जाए, संसार का हित हो जाए, और परमात्मा के दर्शन अथवा परमात्मा का प्रेम प्राप्त हो जाए, तो मेरे मनुष्य की तीनों शक्तियां काम आ गई, पूरा ठीक हो गया, सदुपयोग हो गया, कल्याण हो गया। ये जानने की मानने की करने की शक्ति है, उसका सदुपयोग है। तो ये मनुष्य जन्म सफल तब होता है जब तीनों बातें ठीक हो जाती है, तीनों को ठीक जान लेते हैं तो मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। जब तक इनमें एक को भी ठीक नहीं जानेगा तो सफल नहीं होगा। एक बात और विलक्षण है कि ये अगर पक्षपात न रखे, आग्रह न रखे, अपने जिद न रखे, तो एक से तीनों बात हो जाएगी। एक सेवा मात्र से, कर्म योग से भी तीनों बात हो जाएगी, और ज्ञान योग से भी तीनों हो जाएगी, और भक्ति योग से भी हो जाएगी। करने के बीच में कर्म से नहीं, कर्म योग से मुक्ति होती है, ज्ञान योग में ज्ञान से नहीं, ज्ञान योग से मुक्ति होती है, भक्ति से नहीं, भक्ति योग से मुक्ति होती है। तो योग नाम किसका है? योग की परिभाषा भगवान ने दो की है भगवत गीता में, एक तो कहा समत्वम योग उच्चते, समता जिसके हृदय में राग द्वेष हर्ष शोक ऐसा न हो, अनुकूल तो प्रतिकूलता का असर न पड़े, समता रहे, इसका नाम समत्वम योग है। एक या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का ही वियोग है, दुख का स्पर्श ही न हो। जो उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ है ये सदा साथ रहने वाले नहीं है, क्योंकि जीव है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी है, और संसार की वस्तु सब विनाशी है, विनाशी का संयोग और वियोग होगा। और अविनाशी तत्व का वियोग अभियोग सही नहीं होगा, उसका ज्ञान होगा। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर और सहज सुख राशि ये जीव का स्वरूप है। वो सहज सुख राशि का अनुभव हो जाएगा तो वो ज्ञात ज्ञात हो जाएगा, वो अपने आनंद में मस्त हो जाएगा और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो वो भक्त हो जाएगा। इसमें आपकी स्वतंत्रता है, भक्ति करें न करें परंतु अपने जाने बिना मुक्ति नहीं होगी। अब ज्ञान योग का जिसके आग्रह है उनको भगवान के दर्शन नहीं होते। कर्मयोग में एक आग्रह है तो उसमें विलक्षणता है। आग्रह रहने पर भी अगर ज्ञान के संस्कार है तो वो ज्ञान योग में चला जाएगा, और भक्ति योग के संस्कार है तो भक्ति योग में चला जाएगा, और केवल कर्मयोग तो उससे भी मुक्त हो जाएगा। जो ज्ञान से मुक्त होता है वो कर्मयोग से भी मुक्त हो जाएगा। दूसरे योग की परिभाषा समत्वम योग कहते समता, और एक योग की बताई आपको दुख संयोग वियोगम, मन जड़ता के संयोग के वियोग को भी योग कहते हैं और समता की प्राप्ति को भी योग कहते हैं। ये दो लक्षणों का तात्पर्य क्या है कि दुख का संयोग है संसार का, संसार की जो स्पर्श संयोग है ये दुखालय मशाश्वतम, ये जन्म है दुखालय है दुखालय दुखालय, इसमें जो सुख ढूंढते हैं उनकी मुक्ति कभी नहीं होगी। सुख की इच्छा वाला सुख को भोगने वाला दुख से बच सकता ही नहीं कभी, चाहे कितनी संपत्ति प्राप्त कर ले कितना ही ऊंचा पद प्राप्त कर ले, बन ये ही संस्पर्श जा होगा संबंध जन्य सुख का उपभोग करने वाले को दुख अवश्य में एक भोगना पड़ेगा ही, ये कभी बच सकता नहीं। दुख से तभी बच सकता है जब सुख की आशा न रखे। जहर से मिले हुए बने हुए लड्डू है, उन लड्डुओं को अगर छोड़े तो जहर छोड़ देगा, लड्डुओं को खाएगा तो जहर छोड़ेगा नहीं। ऐसे संसार का सुख रहने वाले को दुख भोगना ही पड़ेगा, कितने ही बड़ा पद बरपद कर लो कितने ही बड़ा वैभव प्राप्त कर लो दुखी उसको होना पड़ेगा। क्यों दुख यो नहीं होते, वहां भी कहा है कि ये संसार होगा दुख यो नहीं होते, दुखालय अशाश्वतम, दुखालय है ये संसार। जैसे भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, विद्यालय होता है तो विद्यालय में विद्या होती है, भोजनालय में भोजन होता है, वस्त्रालय में वस्त्र होते हैं, पुस्तकालय में पुस्तक होती है, ऐसे संसार दुखालय है। उस दुखालय में सुख ढूंढते हैं ये मनुष्यों की साधारण बुद्धि है, वो बुद्धि पशुओं की तरह ही है, विवेक नहीं है। विवेक हो तो विवेक जागृत होने पर संसार के सुख सुख रूप से नहीं दिखेंगे, उनसे वैराग्य होगा। क्यों सुख के भोगी हो दुख भोगना ही पड़ता है, दुख कोई नहीं चाहता है, इस वास्ते जिसका नतीजा दुख होता है वो विवेक ही उसमें रमण नहीं करते। यही संस्पर्श जाप होगा, दुख योने एवते आजंतवंत कौंते नतेषु रमते बुधा, विवेक उसमें रमण नहीं करता, अविवेक ही रमण करते हैं। तो विवेक जागृत होता है, विवेक विशेष जागृत होता है तो भोगों में आसक्ति मिट जाती है, क्योंकि उनके अंत का पता लगता है कि ये सब नाशवान है। और ज्ञान होता है तत्व ज्ञान होता है, वो ज्ञान क्या करता है उसमें प्रचलित बात से तो ऐसा दिखता है कि परमात्म तत्व का ज्ञान होता है, वास्तव में परमात्म तत्व ज्ञान होता नहीं है। यद्यपि ज्ञान की उत्पत्ति होता है, ज्ञान में उत्पत्ति थे पुंसान ख्यात पापस्य कर्मणा, पाप कर्मों के नष्ट होने पर ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा कहा है, परंतु वो ज्ञान वास्तव में आत्म का ज्ञान होता नहीं है। अज्ञान मिटता है, ज्ञान संसार का होता है, और संसार के अज्ञान के कारण से संसार में फंसे हुए हैं। संसार का ज्ञान होगा विवेक होता होता तो संसार की वृत्तियां हट जाएगी, क्योंकि दुख आ रहा है इसमें कौन पड़ेगा, दुख यो नहीं दुखों का कारण है खास, इस बात से संज्ञान होने पर संसार का ज्ञान होता है। परमात्मा ज्ञान तो सबको है, तत्व का ज्ञान अपने स्वरूप का ज्ञान सबको है। क्या ज्ञान है कि मैं हूँ, अपनी सत्ता का ज्ञान सबको है और ये सत्ता रहेगी ही, यही सत्ता वो परमात्मा तत्व सत्ता में मिल जाएगी। कब के जड़ को साथ में नहीं लिया, स्थूल शरीर को लेकर मैं हूँ, सूक्ष्म शरीर को लेकर मैं हूँ, कायम शरीर को लेकर मैं हूँ। तो स्थूल शरीर को लेकर के तो संग्रह और भोग जो देश से रुपया पैसा चीज वस्तु संग्रह कर लूं और उसके द्वारा सुख भोगूं, ये स्थूल शरीर का दायरा है, इसका क्षेत्र है ये। और चिंतन करूं, चिंतन से सुख भोगूं, उनसे आराम लूं, सुख लूं, ये सूक्ष्म शरीर का दायरा है। और समाधि लेकर समाधि का सुख भोगूं, एकाग्रता सुख भोगूं, ये कारण शरीर का परिधि है। कारण शरीर में ये समाधि होती है, जब तक कारण शरीर के साथ संबंध रहता है तब उनके समाधि और वित्थान दो अवस्था होती है। जब कारण शरीर से संबंध टूट जाता है तो उसकी अखंड समाधि होता है, नित्य समाधि होती है, उसको सहज अवस्था कहता है। उत्तमा सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमा धमा। तो उत्तमा सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है, फिर करना कुछ भी बाकी नहीं रहता, पूरा जानना बाकी नहीं रहता, ठीक होता है। तो सहज क्या है कि अपना सहज स्वरूप है आनंद रूप, जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि। तो सहज सुख में स्थित हो गया, अब कान से जी का भी संबंध मिट गया, वो मिटने पर सहज अवस्था सत्य होती है। तो सहज अवस्था ज्ञान होता नहीं है, अज्ञान मिटता है। तत्व ज्ञान भी अज्ञान को मिटाकर स्वयं शांत होता है। वेदांत के ग्रंथों में, अद्वैत सिद्धांत के ग्रंथों में तत्व ज्ञान की बात बताई है, उसमें बताया कि अज्ञान जो वृत्ति ज्ञान, वृत्ति से ज्ञान होता है, वो ज्ञान वृत्ति है, वो केवल परमात्म तत्व के सम्मुख करके वृत्ति स्वयं शांत हो जाती है। ज्ञान जैसे दिया सलाई है, अंधेरे को नाश करके दिया सलाई खुद खत्म हो जाती है, ऐसे ज्ञान खुद खत्म हो जाता है, स्वरूप ज्ञान रह जाता है, स्वरूप बोध नित्य वो रहता है। ज्ञान जो भी होता है वो ज्ञान नित्य, वो वृत्ति ज्ञान है, वृत्ति में होने वाला ज्ञान, वो वृत्ति शांत होती है तो वो ज्ञान शांत हो जाता है। वृत्ति रही तो स्वरूप का बोध है वो हो जाता है, फिर हो गया हो ही गया, तो उसको ज्ञान हो जाना भी कह सकते है, अज्ञान मिटना भी कह सकते है। अज्ञान आवृतम ज्ञान तेन मुह्यंती जंतु, अज्ञान से ज्ञान आवृत हुआ है। तो अज्ञान को अद्वैत सिद्धांत में ज्ञान के अभाव का नाम नहीं बताया है, अभाव नैयायिक बताते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, ऐसे चार अभाव है, फिर इनमें विवेचन आता है। तो वो अभाव एक पदार्थ माना है, सात पदार्थों में नैयायिक मानते हैं, वेदांत दर्शन अभाव नहीं मानते, अभाव को पदार्थ नहीं मानते, प्रथम पदार्थ नहीं मानते, वो भी अज्ञान मानते हैं। अज्ञान में एक विलक्षण बात है, वो भाव रूप मान, ज्ञान का अभाव अज्ञान है ऐसा नहीं है, वो अज्ञान को भाव रूप माना, एक विलक्षण बात है। अद्वैत सिद्धांत में एक चेतन को ही भाव रूप से मानते हैं, सत्ता रूप से, और दूसरी सत्ता नहीं है, सत्ता का भाव मानते हैं, पर अज्ञान को भाव रूप मानते हैं, विलक्षण बात है। अज्ञान है वो भाव रूप है, अगर भाव रूप न हो तो आवरण कैसे होगा, घटा भाव यहाँ है तो घटा भाव ने क्या आवरण कर दिया इस स्थान को, अधिष्ठान को आवरण नहीं कर सकता, इस वास्ते आभा अज्ञान भाव रूप है। और ये गैर उतरने से फिर उनको अनिर्वृत नहीं कहे, सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, सत असत दोनों नहीं कह सकते, सत असत विलक्षण है, ऐसे अनिर्वचनीय इसको कहा है। अनिर्वचनीय के दो अर्थ होते हैं, मानो जिसका निर्वचन व्याख्या नहीं कर सकते वो अनिर्वचनीय है, ये दो अर्थ होते हैं। परमात्म तत्व है वो अनिर्वचनीय है, वहाँ हेतु बाचो निवर्तन थे अप्रापिक अनुसार वाणी उससे लौट आती है, वहाँ वो निर्वचन होता नहीं, इस वास्ते वो अनिर्वचनीय है। और एक सत असत से विलक्षण अनिर्वचनीय है, तो संसार अनिर्वचनीय है, माया अनिर्वचनीय है, सत असत से विलक्षण इस वास्ते, और परमात्मा अनिर्वचनीय है कि वो वस्त्रों से परे है, वस्त्रों के आबद्ध नहीं होता, इस वास्ते वो भी अनिर्वचनीय है। ये दो अर्थ है, प्राय अनिर्वचनीय माना है, अभाव रूप नहीं माना, भाव रूप अज्ञान माना है। वो ज्ञान के द्वारा जो अभाव रूप ज्ञान है वो भाव रूप ज्ञान है वो मिट जाता है, भाव रूप अज्ञान होता है वो मिट जाता है। भाव रूप पहले है, ये वास्तविक भाव दो तरह का होता है, भावनाओं सत्ता, सत्ता एक पारमार्थिक सत्ता होती है, एक व्यवहारिक सत्ता होती है, एक प्रातिभासिक सत्ता, तीन सत्ता होती है। तो सत्ता जो वास्तविक सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता है वो सत्ता है, और ये प्रातिभासिक व्यवहारिक दो सत्ता सत्ता नहीं है, ऐसी सत्ता वाला अज्ञान है। तो ये सत्ता नित्य नहीं है, पर सत्ता मानते हैं। व्यवहारिक सत्ता प्रातिभाषिक सत्ता में फर्क ये है कि व्यवहारिक सत्ता से कार्य होते हैं, प्रातिभाषिक सत्ता प्रतिभास होता है, उससे कोई कार्य नहीं होता। जैसे रस्सी में सांप दिखता है तो सांप काटता नहीं, उसका जहर नहीं चलता, व्यवहार नहीं करता, और रस्सी की व्यवहारिक सत्ता है, संसार की व्यवहारिक सत्ता है, व्यवहार में लेन देन आदि होते व्यवहारिक है। अगर ऊंचे ग्रंथों में फिर गहरे विचार करे तो व्यवहारिक नहीं है। प्रातिभाषिक वास्तविक दो ही सत्ता मानी है, व्यवहार को यह व्यवहार भी जो प्रातिभाषिक ही है, ये कौन सा नित्य है इसको भी सत्ता नहीं मानती। तो सत्ता पारमार्थिक एक ही है और एक प्रातिभाषिक सत्ता प्रतीति होती है, प्रतीति मिट जाती है तो सत्ता उस सत्ता रह जाती, वो सत्ता उत्पन्न नहीं होती है, उसका ज्ञान होता नहीं है, अज्ञान मिटता है, ये बात सिद्धांत की है। तो परम शरीर मनुष्य का प्राप्त हुआ तो कृत कृत भी हो जाता है, ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, और प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। ये तीन शक्तियों का ठीक सदुपयोग कर दे तो फिर ना करना बाकी रहता, ना जानना बाकी रहता, ना पाना बाकी रहता, तो पूर्णता हो जाती है। फिर किसी तरह की अपूर्णता किंचित मात्र भी नहीं रहती, शरीर की सफलता सर्वथा सफलता हो जाती है, ये तत्वबाद है। तो ये तीन शक्तियों का सूर्यों को उस तत्व को प्राप्त करना ये मनुष्य का काम है। ये खास बात आपको बताई। अब मनुष्य करने की बात रही तो करना क्या चाहिए, अब इसकी थोड़ी सी बात विस्तार से बता दें। अपने स्वार्थ का और अभिमान का त्याग करके और दूसरों को सुख हो, दूसरों को आराम मिले, दूसरों का भला हो, दूसरों का कल्याण हो, ये करना है, केवल करना ही है, अपने लिए करना नहीं है। अपने लिए करोगे तो देखो करने में दो होते हैं, एक तो क्रिया होती है, एक पदार्थ होते हैं। क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति के कार्य हैं। करना होता है उसका भी आरंभ और अंत होता है, पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश होता है। तो उत्पत्ति विनाश के द्वारा अपना हित नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो अनुत्पन्न तत्व है, जीवात्मा स्वयं ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुखदासी ये बताया है। तो करने का प्रयोजन होता है उत्पन्न होने वाली वस्तु मिलती है, क्योंकि क्रिया में दो बात है, क्रिया एक होती है पदार्थ होते हैं, ये शरीर आदि सब देखते ये पदार्थ है और इनकी हलचल है, ये क्रिया है। तो क्रिया का भी आरंभ और अंत होता है, पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश होता है, ये नित्य रहने वाले हैं नहीं, इसके लिए इसने अपना कोई हित हो जाएगा, अपना कल्याण हो जाएगा, ये बात है ही नहीं। ये हित परोपकार से होता है, उसमें परोपकार दूसरे के सुख पहुंचाने से हित होता है, तो वो सुख पहुंचाने से पुण्य होता है, ये ठीक है, पर हित होता है अपने सुख का, अपनी कामना के त्याग करने से, वो महान हित होता है। अपनी कामना रहेगी और दूसरों को सुख पहुंचाएंगे तो व्यापार चलेगा, लेना देना चलेगा, लेना देना करने में लेना देना। जैसे दुकान कहीं करता है तो दुकान में माल रहता है और बिक्री करता है, उसमें बिक्री करता है तो गांव में बिक्री करने से उधार भी देना पड़ता है, तो उधार देना है अथवा उधार लेना है दूसरों से, रुपया लेना भी होता है, माल देना भी होता है, तो उधार लेना और देना होता है। तो लेना पूरा चाहेंगे तो दुकान नहीं उठेगी, क्यों पूरा जल्दी मिलता नहीं, लेने के लिए कुछ उधार लेना ही पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, तो कुछ लेगा कुछ देगा, तो उसमें उधार बाकी रहेगा, तो वो तो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए से कर्म योग में दूसरों की सेवा करना है, और सेवा लेने की बात रहेगी तो दुकानदार चलेगी, लेने का बिल्कुल त्याग कर दे किंतु मात्र हम लेना ही नहीं है। किधर लेना नहीं तो रोटी नहीं खाएगा, क्या जल नहीं पिएगा, क्या कपड़ा नहीं पहनेगा, क्या मकान में नहीं रहेगा क्या। तो ये लेना शरीर के लेना देना नहीं है, शरीर के निर्वाह के लिए किया जाए तो सारी रंग केवल कर्म खूर नाषम, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म किया जाए तो उसको पाप नहीं लगता। अपने सुख के लिए, भोग के लिए, आराम के लिए, स्वार्थ के लिए करता तो वो बंधन करने वाला है। वो बंधन क्यों करेगा कि स्वार्थ वो छोटे सिद्ध होगा और भावना वो स्वार्थ की बनी रहेगी, जहाँ जाएगा वहाँ आसक्ति रहेगी, राग द्वेष रहेंगे, तो ये राग द्वेष दोनों चलते ही रहेंगे। दुख दिया तो द्वेष होगा, सुख दिया तो राग होगा। इंद्रिय से राग द्वेष हो व्यवस्थित हो, प्रत्येक इंद्रिय में राग द्वेष रहते हैं, इस वास्ते राग द्वेष के वशीभूत न होकर के दूसरों को सुख पहुँचाना, वो सुख पहुंचाने से अपना भला होता है। इस विषय में विशेष गहरी बात तो नहीं है, परंतु सामान्य रीति से संसार में कैसे रहे इस पुस्तक में बात लिखी है, जो साधारण रीति से सबके बड़ी काम की चीज है, आपस में व्यवहार में भी काम की चीज है, और सर्वथा निष्काम भाव हो तो कल्याण में भी काम आएगी, ऐसी बातें लिखी है। इस तरह से ही तत्व की बातें हैं, वो भी कई पुस्तकों में लिखी है, साधनों और साध्य बताया है, वासुदेव सर्वम बताया है, और नित्य योग की प्राप्ति बताई है, ऐसी कई पुस्तकें लिखी गई है, उनमें कुछ ऐसी ऐसी बातें विशेषता लिखी है। अगर वो मनन करके ठीक धारण किया जाए तो अपने बोध होने में, अपने ज्ञान होने में, अपना उद्धार होने में, परमात्मा की प्राप्ति होने में, तत्व ज्ञान होने में बड़ी सहायता मिलती है अगर विचार करे तो। ऐसी बातें है भगवद गीता में, ये बहुत विलक्षण बात आई है। भगवद गीता का विचार करते हैं तो बहुत अलौकता लिखी है। व्यवहार में परमार्थ कला भरती है, व्यवहार में, संसार के व्यवहार में सब व्यवस्थाओं करते हुए परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। व्यवहार में क्रूर से क्रूर क्या होता है, युद्ध होता है। अर्जुन ने भी घोरे कर्मणी किंग नहीं हो जैसी घोर कर्म, कर्म में भी घोर कर्म है जिसमें हिंसा हो, माथा ही काटना पड़े, केवल दिन भर दूसरों का कड़ा काटना है, ऐसा घोर कर्म, उस घोर कर्म में भी कल्याण हो जाएगा, ये बात गीता ने बताई है। क्यों बताया कि इस ऐसा क्रूर कर्म संसार का नहीं है, व्यापार करो, गृहस्थ आश्रम करो, उसमें नौकरी करो, चाहे दलाली करो, चाहे कुछ भी संसार काम किया जाए, तो युद्ध जैसा घोर कर्म नहीं है। युद्ध जैसा घोर कर्म से ही कल्याण हो जाए तो साधारण कर्म से कल्याण हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। तो कल्याण में क्या होता है कि अपने पर जो कर्जा है अपने लिया है, माता पिता से कर्जा पाया है, गुरुजनों से शिक्षा पाई है, संसार से हमने पाया है, कितना ही कोई त्याग करे पर संसार से उपकार पाए बिना जी नहीं सकता। कोई रखे कि मैं तो बिल्कुल दूसरे का लेता ही नहीं, तो क्या वो सड़क आपने बनाई है जिसमें आप चलते हैं, वो किसी और की बनाई, उसका काम लेना पड़ेगा। आदान प्रदान संसार में होगा, उसी से ये संसार चलता है सबका सब। इस वास्ते किसी से उपकार का किए लिए बिना राजा महाराजा सेठ धनी देवता कोई कितना ही ऊंचा क्यों न हो, संसार में तो लेना देना पड़ता ही है। तो उसमें यही युक्ति है कि देने का जो लेने का जो कर्जा है वो कर्जा चुका देता है। तो पहले का कर्जा है वो सेवा करके चुका दो, और लेने की इच्छा छोड़ दो, कामना छोड़ दो, त्याग दो, वो लेना नहीं होगा तो दुकान उठ जाएगी, तो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। कर्मयोग का ये विषय है दुकान उठाने की तरह, और ये आपस में लेना देना है। ये लोग भी समझते हैं बिल्कुल मारवाड़ी भाषा है, और ये अपना लेनिया देनिया है, लेनिया देनिया है, ये जन्म मन देगा ही, क्यों कुछ लड़ाए कुछ लड़ाए कुछ लड़ाए कुछ लड़ाए बस जन्म मरो ये चलता ही रहेगा। इसमें लेने की इच्छा लेने की कामना लेने का भोग सुख पाना सुख की आशा रखना और सुख की कामना रखना आशा है तृष्णा है कामना है वासना है ये मांगना है आदि जो दूसरे की आशा रखना कुछ मिल जाए बस ये ही बंधन करने वाली चीज है। और देना है सुख पहुंचाना हरे को तो ये संसार में सुख पहुंचाने के लिए ही संसार की रचना है। अब संसार में माता पिता है उनको सुख पहुंचाना है। माता पिता से हमने शरीर प्राप्त किया है माँ के द्वारा हमारा पालूंगा माँ के दूध से यह शरीर बचा है पिता के पद कमाए हुए द्रव्य से कपड़ा मिला है अन्न मिला है वो पाया है तो माता पिता का बड़ा ऋण है। तो उनका उतार देना ऋण मातृ पितृ भक्ति हो हृदय में अपने दुख पाओ सुख पाओ किस तरह से माँ बाप को सुख हो इनको आराम मिले एवं केवल केवल माता पिता के लिए ही संसार में और कोई हमारा कुछ प्रयोजन नहीं है। ऐसा किया है उनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। ऐसे पति पत्नी का भाव है तो पत्नी से सुख लिया है वो सुख लिया है इतना उसको सुख पहुंचा दे अधिक और सुख अधिक नहीं पहुंचाता है तो उसको कर्जा रहता है। स्त्री के लिए बताया कि तुम पतिव्रता बनो केवल पति के सुख में सुख अपने सुख की कुछ इच्छा मत करो। सुख ले लेने का इतना अपराध नहीं है सुख की इच्छा का बड़ा भारी अपराध है महान बंधन है। साधु हो तो सुख लेता नहीं सुख लेने की इच्छा है दूसरे हमारे को प्रणाम भी करे आदर भी करे भिक्षा भी दे ऐसी आशा दे तो आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। दुख के साथ भी परम सुख लगाया है और सुख के साथ भी परम लगाया है। तो संसार से आशा है तृष्णा है वासना है कामना है मांगना है ये महान बंधन करने वाला है। मन में कुछ भी इच्छा है वो बांधेगी उसका जन्म मरण होगा। इस बात से गीता में कामना के त्याग पर बहुत बड़ा जोर दिया है और ग्रंथों में इतना कामना के त्याग पर जोर दे दिया है। गीता ने मूल पकड़ा है यहाँ से बंधन है तुम अगर ठीक चाहो तो इसका त्याग करो बंधन छूट जाएगा। तो कामना का त्याग करके सेवा करना तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए स्त्री केवल पति की प्रसन्नता के लिए ही काम करे अपनी कोई इच्छा नहीं है तो पतिव्रत धर्म से बड़ी भारी विलक्षण शक्ति उसमें आ जाती है अलौकिक शक्ति आ जाती है। सांडिली एक वीर की का सांडिलिनी इनकी कथाएं आती है सूर्य के उगने को बंद कर दिया कि सूर्य नहीं उगेगा पति था कोढ़ ही उसकी सेवा इतनी तत्परता से की है कि जिससे उनका इतना तपोबल बढ़ गया साफ दे दिया कि तुम्हारे सूर्य उदय होते ही तुम्हारा पति मर जाएगा ऋषि की सूर्य के लगे से दुख हुआ तो कहता सूर्य उदय होगा ही नहीं सूर्य बंद हो गया। लोग त्राई त्राई कर देवता लोगों को खलबली मची अनुसूया के पास गए पति बताओ शेष अनुसूया जी हुई है अनुसूया के पास गई कैसे लोग मर रहे हैं संध्या बने काम धंध सब ये दुनिया मात्र की घड़ी है इस घड़ी से काम होता है सब सूर्य से और सूर्य में हो जाए तो फिर सब काम ठप हो जाएगा कुछ नहीं चलेगा। असली चीज है ये सविता है सबका उत्पादक है सबका रक्षक है वो नहीं हो कैसे होगा। तो अनुसूया ने जाकर कहा है कि तू सूर्य को आज्ञा दे दे वो कहते हैं कि सूर्य उदय होगा मेरा सूर्य अस्त हो जाएगा। कोढ़ी था कोढ़ी गलत कोढ़ था उसको पति को वो मर जाएगा तो मैं तो विधवा हो जाऊंगी मेरा सूर्य अस्त हो जाएगा। तो कहते उसको मैं जिला दूंगी तू सूर्य को आज्ञा दे सूर्य ने आज्ञा दी सूर्य उदय हो मर गया अनुसूया ने मैं तो बल से जिला दिया जीने पर कोढ़ विद्वान हो गया अच्छा हो गया ऐसी कथा आती है। पद्म पुराण में आती है और एक स्कंद पुराण में आती है। स्कंद पुराण में दीर्घ का नाम क्या आती है इसमें सांडिली नाम करके आती है ऐसी कथा आती है। तो संसार में रहते हुए भी अपने स्वार्थ का, अपने सुख का, अपने मान का, अपनी बढ़ाई का अगर भावना भीतर से त्याग कर दे तो संसार काम करते हुए कल्याण हो जाएगा। ये त्याग करने पर तो कल्याण हो जाए क्रूर कर्म से। भगवान ने भी कह दिया दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में, सुख दुखी समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय तथो युद्धा युद्ध से नहीं पाप माफी। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय जय और परजय को अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने तो कहा कि पाप मेवा श्रेयस्मात्ता, इन आस्थाइयों को मारने से पाप लगेगा। भगवान ने कहा असचेत इस धर्म न करी शशि तथा स्वधर्म कीर्तन हितवा पाप पवशि, तुम धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। अर्जुन कहता पाप युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, तो भी पाप से छूटेगा, से करने से पाप लगे न करने से पाप लगे तो छूटने को उपाय था। सुख दुख समय कृपा समत्व योग उचते, योग है ये समता का नाम योग है। तो कर्म करते हुए समता कर्म योग है, भक्ति करते हुए समता का भक्ति योग है, और ज्ञान विचार करते समता का नाम ज्ञान योग है। ये तीनों योग उद्धार करने वाले हैं। वो समत्व योग उचते सुख दुख के समय कृपा लाभ लाभ हो गया जय और पर लाभ लाभ और हानि और सुख और दुख इनको समान समझे। न हर्ष हो न शोक हो, न प्रसन्नता हो न उद्विग्नता हो, न प्रेम प्राप्य प्राप्त सिर्फोर सम्मूढ़ ब्रह्मोद ब्रह्मणी स्थित परमात्मा स्थित हो जाएगा। इस दृष्टि से तीनों को वर्ण है। तो व्यवहार में स्वार्थ का त्याग करके हित करना, कुटुम्ब मात्र में ही अपने स्वास्थ्य का त्याग करके सबका हित करना, ये खास कृष्ण में रहते हुए मुक्ति का सीधा रास्ता है। नारायण 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 नारायण।